हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। राजस्थान सिरोही, सुबह के करीब 7:30 बजे, काशी, राधेश्याम, वेदांत और विहा चारों एक गाड़ी में थे, जिसे वेदांत ड्राइव कर रहा था। वे आज सुबह सुबह ठाकुर जी के मंदिर जाने वाले थे। पहली बार उनका जमाई उनके घर आया था, इस वजह से काशी और राधेश्याम ने तय किया था कि वे सुबह होते ही उन्हें मंदिर के दर्शन करवाएंगे, और सुबह की आरती के लिए वे जल्दी जल्दी तैयार हुए थे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक खूबसूरत मंदिर के सामने आकर रुकी। वो मंदिर बाहर से पूरी तरीके से गुलाबी फूलों से सजा हुआ था। उसका दरवाज़ा भी आधा ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस पर दो फूलों की लड़ी लिपटी हुई थी। वो मंदिर पूरा सफ़ेद रंग का था। उसमें संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल किया गया था, जो दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। वेहा ने इस वक्त एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी, तो वहीं वेदांत ने एक वाइट कलर का कुर्ता पजामा। काशी और राधेश्याम ने आज येलो कलर के कपड़े पहने थे, और वे अक्सर ठाकुर जी के मंदिर में आते वक्त येलो कलर के कपड़े ही पहनकर आते हैं। वे अभी बस अंदर जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें दरवाजे पर एक लड़का और दो लड़कियां मिल गईं। वो तीनों विहा को देखते ही एक साथ चिल्लाईं, पीहू, तू यहाँ क्या कर रही है और कहाँ गायब थी इतने दिनों से? उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि विहा के माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। विहा और अनाही की शादी की खबर सिर्फ उनके मोहल्ले तक सीमित थी, क्योंकि शादी तो किसी बाहर के रिसॉर्ट में हुई थी, उनके घर में नहीं। और ये विहा के फ्रेंड्स थे, जिनके साथ वो 12वीं क्लास तक पढ़ी थी। वेदांत, जो विहा के पास ही खड़ा था, वो आंखें छोटी करके कभी विहा को तो कभी सामने खड़े उन तीनों लोगों को देख रहा था। उस लड़के ने जल्दी से कहा, पीहू, तुम्हारे अंकल हैं क्या, या फिर कोई दूर के रिश्तेदार? मैं आज से पहले इन्हें कभी देखा नहीं है। विहा कुछ बोल पाती उससे पहले ही वेदांत ने जबड़े कसते हुए कहा, दूर के नहीं, काफी करीब के रिश्तेदार, मैं हस्बैंड हूँ इसका, तुम लोग इसके फ्रेंड्स हो इसलिए बताया नहीं। इतना बोलकर वेदांत ने विहा को घूरा। उस लड़की के साथ आई लड़कियों ने जल्दी से विहा के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस यार, तुझे एक बार तो कॉल करना चाहिए था, हम कौन सा तेरी शादी में जाकर ज्यादा खाना खाकर जा रहे थे। दूसरी लड़की वेदांत को देखते हुए बोली, या फिर तुझे लग रहा था तेरे हैंडसम पति को हम नज़र लगा देंगे। इतना बोलकर दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया और फिर हंसने लगीं। काशी और राधेश्याम ने उन लोगों को काफी देर तक बात करने से नहीं रोका था, लेकिन जब उन्हें लगा कि आरती में देर हो जाएगी, तो काशी उन लोगों के पास जाकर बोली, प्रिया, जागृति, ये दोनों पहली बार यहाँ आए हैं, तो मैं चाहती हूँ दामाद जी ठाकुर जी की आरती लेकर जाएं, तो एक बार ये आरती कर लेते हैं और तुम लोग विवाह से बात कर लो, और मन न भरे तो इसे अपने साथ ले जाना। फिर काशी ने उस लड़की को देखते हुए कहा, अभिषेक, तुम खुद क्यों नहीं घर आ जाते, कितने दिन हो गए मैंने तुम्हें अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया है। ये सुनकर अभिषेक ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सॉरी आंटी, न्यू कॉलेज एडमिशन वगैरह के चक्कर में मैं बहुत परेशान था, इसलिए आ नहीं पाया, और इस छिपकली ने मेरे पीछे से शादी तक कर ली, एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। वो मासूम सा चेहरा बनाकर अभिषेक, प्रिया और जागृति को देख रही थी। जागृति ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम्हारे इस मासूम चेहरे से कुछ नहीं होने वाला है, अब हमें पार्टी चाहिए। इतना बोलकर वो तीनों तो वहाँ से बाहर आ गए, और काशी, राधेश्याम तीनों चले गए अंदर। पंडित जी पहले से आरती की तैयारी कर रहे थे। विहा मंदिर नहीं जा सकती थी अपने पीरियड्स की वजह से, और उसे लग रहा था कि वो सुबह मंदिर में बाहर खड़ी रहकर बोर हो जाएगी, लेकिन अपने दोस्तों को देखकर वो काफ़ी खुश हो चुकी थी। वो अभिषेक, जागृति और प्रिया से हंस हंसकर बातें कर रही थी। उन लोगों ने करीब आधे घंटे तक गप्पे लगाए थे, तो वहीं अंदर मंदिर में वेदांत को भगवान में ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन वो अपने सास ससुर को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी हाथ जोड़े उनके बगल में बैठा था और चुपचाप जो जो पंडित जी कर रहे थे उन्हें गौर से देख रहा था। बीच बीच में पंडित जी अगर कोई मदद मांग रहे थे तो वेदांत वो भी कर रहा था। काशी और राधेश्याम काफी खुश थे अपने बड़े जमाई से। कुछ देर बाद उनकी आरती खत्म हो चुकी थी और वे तीनों बाहर आ गए। वेदांत की तीखी नज़र सीधा विहा पर गई, जो अभिषेक को हाईफाई देते हुए मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंस रही थी, अपनी फेयरवेल की बातें कर रही थी। वो इस वजह से बार बार कभी डांस पोजिशन करके दिखा रही थी, तो कभी अपने दोस्तों के साथ फनी पोज करके अभिषेक को दिखा रही थी और खुश होते हुए बोल रही थी। तुमने ना हम गर्ल्स की पार्टी को मिस कर दिया। हमने इतना ज्यादा एंजॉय किया था उस पार्टी में। तुम लड़के तो होते ही ड्रामेबाज हो। तुम लोगों ने ही बोला हम लड़कियों के साथ पार्टी नहीं करेंगे, और देखो उसका नतीजा क्या हुआ। तुम लोगों को प्रिंसिपल मैडम ने इतना डांट दिया और हमने तुमसे ज्यादा मजे किए। उसके बाद भी हमें कुछ नहीं कहा। वो तीनों लड़कियाँ मिलकर अभिषेक के मजे ले रही थीं। वहीं अभिषेक का मुंह उतरा हुआ था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, निकलो यहाँ से, तुम लोग ज्यादा हो गई हो। मेरे ग्रुप वाले लड़के आए नहीं हैं, तो बस अकेला देखकर मजाक बना रही हो मेरा। देखना किसी दिन मेरा भी नंबर आएगा। काशी उन लोगों के बीच में आते हुए बोली, बस बच्चों बहुत बात हो गई, अब वे हाँ चलो घर चलते हैं। वेदांशी को भूख लगी होगी, हमने उन्हें नाश्ता भी नहीं करने दिया। वेहा जो बहुत ज्यादा खुश थी, काशी की बात सुनकर उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। उसको बुरा लग रहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ सिर्फ इतनी देर ही हंसी मजाक कर सकती थी। उसने एक नज़र वेदांत को देखा, जिसका चेहरा सुबह आते वक्त तो नॉर्मल था, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा था। काशी और राधेश्याम ने उन तीनों से बातें करते हुए उन्हें वहाँ से विदा किया और गाड़ी में आकर बैठ गए। तो वहीं विहा वेदांत के करीब जाकर धीरे से बोली, मुझे टोमैटो बोलने वाले आज खुद क्यों टोमैटो बने हुए हैं, और मंदिर जाकर इतनी सड़ी शक्ल कौन बनाता है। वेदांत ने गुस्से में कहा, मैं बनाता हूँ सड़ी शक्ल, चलो अब। वहीं दूसरी तरफ गुजरात निमानी हाउस, अनाही कॉफी मग हाथ में ले एक कमरे में एंटर करती है तो देखती है आज रोहान रेडी होकर शुगर के साथ बालकनी में बैठा था। अनाही वहाँ गई तो रोहान जल्दी से सोफे से उठते हुए बोला, सॉरी वो मैं बालकनी में आना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं शुगर को क्या हो गया था, वो भाग भाग कर यहीं आ रही है। रोहान की बात सुनकर अनाही ने आसपास नजरें दौड़ाईं तो रोहान ने कन्फ्यूजन में कहा, आपको दिखाई नहीं दी शुगर। अनाही ने रोहान के बगल में बैठी शुगर को आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा, ये सफ़ेद बिल्ली मुझे दिख रही है, मैं तो ये देख रही हूँ कि इसका आशिक कहाँ है। अक्सर बिल्लियाँ उसी से मिलने के लिए एक ही जगह बार बार आती हैं। वैसे भी ये ओपन बालकनी है, हो सकता है कोई बिल्ली आया होगा इससे मिलने के लिए। रोहान ने हैरानी से आंखें बड़ी करके एक बार शुगर को देखा, जो ब्लैंक करके उसे देख रही थी, और एक बार अनाही को, जो अभी बालकनी में ही नजरें दौड़ाई रही थी। उसने आगे बढ़कर बाहर भी देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अनाही ने कॉफी मग को टेबल पर रखा और फिर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए शुगर को घूर कर कहा, खबरदार, जो अपने आशिक को मेरी बालकनी में बुलाया है, मुझे तुम्हारे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे तुम इधर उधर बिखेर देती हो। फिर उसने गंदा सा मुंह बनाकर सोफे को देखा, जिस पर शुगर बैठी थी, और उसके सफ़ेद बाल वहाँ भी हल्के लग चुके थे। वहीं अनाही के इस बात पर रोहान को गुस्सा आ गया। रोहान ने शुगर को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, ठीक है अब ये इस सोफे पर नहीं बैठेगी, पर आप इसे ऐसे नहीं डांट सकती हैं।
अनाही ने एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, मैं इसे भी डांट सकती हूँ और इसके मालिक को भी डांट सकती हूँ। रूहान बस आंखें फाड़े अनाही को देखते रह गया, जो गुस्से से शुगर को घूरते हुए बालकनी से वापस अंदर चली गई।